एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, हम यहां हैं कुछ मुश्किल कुछ जरूरी आइडियाज को आसान बनाने के लिए। और आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने, सच कहूं तो, सोचने के तरीके पर ही सवाल खड़े कर दिए।
हाँ बिल्कुल, आज बात होगी डैनियल कहानमन की जबरदस्त किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की। और देखिए आज का जमाना कैसा है।
हाँ, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड।
सही कहा, हर तरफ से इतनी जानकारी आ रही है कि ये समझना कि भाई हमारा दिमाग चलता कैसे है, हम फैसले कैसे करते हैं और हाँ गलतियां क्यों कर बैठते हैं, ये बहुत जरूरी हो गया है।
बिल्कुल, और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, है ना? मतलब रोज की जिंदगी में पैसे के मामले हों या ऑफिस के काम या रिश्ते नाते, ये समझ हमें बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकती है। तो चलें शुरू करें दिमाग की इस दुनिया की सैर।
हाँ जरूर, पहले लेखक को थोड़ा जान लेते हैं। डैनियल कहानेमन इजरायली अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और अर्थशास्त्री भी।
और सबसे मजेदार बात तो यह है, आप बता रही थी कि थे तो साइकोलॉजिस्ट,
हाँ
लेकिन नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में 2002 में, ये कैसे हुआ?
है ना कमाल की बात, साइकोलॉजिस्ट को इकोनॉमिक्स का नोबेल। दरअसल ये उनके लंबे समय के साथी एमोस टवर्स्की के साथ किए गए काम के लिए था। टवर्स्की का तो खैर पहले ही देहांत हो गया था,
ओ
पर इन दोनों ने मिलकर एक पूरी नई फील्ड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स यानी व्यवहार अर्थशास्त्र की नींव रखी।
अच्छा,
सही कहा, उन्होंने दशकों तक रिसर्च की कि इंसान सोचता कैसा है, फैसले कैसे लेता है। उनके एक्सपेरिमेंट्स ना अक्सर बड़े सीधे साधे होते थे।
हाँ
हाँ पर उनके नतीजे एकदम क्रांतिकारी थे। बार बार उन्होंने दिखाया कि हमारी सोच जो है वो तर्क और गणित के नियमों से कैसे भटक जाती है। और ये किताब असल में उनकी पूरी जिंदगी की रिसर्च का,
और उसे उन्होंने आम लोगों के लिए लिखा आसान भाषा में।
बिल्कुल, बहुत दिलचस्प अंदाज में इसने सच में हमारी समझ को बदल दिया है कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे फैसले लेता है।
तो फिर इस किताब का मेन आइडिया क्या है, मतलब जड़ क्या है इसकी?
कहानीमन का जो मूल तर्क है वो ये कि हमारी सोच, आप कह सकते हैं, दो अलग अलग तरीकों से चलती है। दो सिस्टम्स हैं हमारे दिमाग में, सिस्टम 1 और सिस्टम 2।
सिस्टम 1 और सिस्टम 2। अच्छा, तो सिस्टम 1 क्या है?
सिस्टम 1 है हमारी तेज सोच, एकदम ऑटोमैटिक, सहज, बिना किसी मेहनत के। जैसे किसी का चेहरा पहचानना या फट से बताना कि 2 + 2 कितने हुए,
हाँ, 4।
है ना? ये हमारी गट फीलिंग, हमारा इंट्यूशन यहीं से आता है।
और सिस्टम 2, वो धीमा वाला।
हाँ सिस्टम 2 है हमारी धीमी सोच, इसमें मेहनत लगती है, ये लॉजिक पर चलता है, सोच समझ कर काम करता है। जैसे कोई मुश्किल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो,
जैसे 17 × 24, इसमें सोचना पड़ेगा।
बिल्कुल, या किसी बहस में पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। हम सोचते हैं कि हम ज्यादातर सिस्टम 2 से चलते हैं, कि हम बड़े लॉजिकल हैं,
हाँ, खुद को तो हम यही मानते हैं।
पर कहानेमैन कहते हैं कि असल में हमारे ज्यादातर काम, ज्यादातर फैसले सिस्टम 1 ही चुपचाप कर डालता है।
ओ, तो मतलब किताब का बड़ा सवाल यही है कि हम सोचते कैसे हैं और क्यों हमारे फैसले, जैसा आप कह रही थी, एक पैटर्न में गलत होते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम मूर्ख हैं,
नहीं बिल्कुल नहीं,
बल्कि ये कि हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि कुछ खास तरह की गलतियां होना वो स्वाभाविक हैं। उन्होंने वो इकोनॉमिक्स के रैशनल मैन वाले आइडिया को चैलेंज किया।
सही। और उनका मकसद है कि हम इन गलतियों को समझें, पहचानें और शायद उनसे बच पाएं। उसके लिए वो एक भाषा देते हैं, एक फ्रेमवर्क देते हैं। किताब हमें दिमाग के अंदर ले जाती है, पहले दो सिस्टम समझाती है, फिर उन मेंटल शॉर्टकट्स यानी ह्यूरिस्टिक्स और उनसे होने वाले बायस या पूर्वाग्रहों के बारे में बताती है।
अच्छा, ह्यूरिस्टिक्स और बायस।
हाँ फिर ओवर कॉन्फिडेंस, कैसे हम जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में रहते हैं, फिर हम चुनाव कैसे करते हैं, और आखिर में खुशी और यादों का क्या चक्कर है, इस पर भी बात होती है।
चलिए तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं, इन दो सिस्टम से शुरू करते हैं। सिस्टम 1, आपने कहा तेज, ऑटोमैटिक, सहज, ये बैकग्राउंड में चलता रहता है बिना थके।
हाँ
और सिस्टम 2, वो हमारा सचेत मैं है जो तर्क करता है, प्लान बनाता है, कंट्रोल रखता है। लेकिन उसकी एक दिक्कत है,
क्या?
वो ना थोड़ा आलसी है, उसे चलाने में जोर लगता है, ध्यान देना पड़ता है और वो जल्दी थक जाता है।
अच्छा तो इसलिए ज्यादातर टाइम क्या होता है, ये आलसी सिस्टम 2 सिस्टम 1 से जो भी आइडिया आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, उन्हें बस मान लेता है बिना ज्यादा सवाल किए।
बिल्कुल,
काइनेमैन का एक कोट भी है कि सिस्टम 1 आपके कई फैसलों का गुप्त लेखक है।
वाह, गुप्त लेखक। मतलब हमारे कितने सारे फैसले पर्दे के पीछे से हो रहे हैं।
सोचिए जरा, पैसे तो ये जोड़ी ठीक काम करती है, क्योंकि हर छोटी बात पर सिस्टम टू को लगाएंगे तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी।
हाँ वो तो है,
पर गड़बड़ तब होती है जब सिस्टम वन का अंदाजा गलत हो और सिस्टम टू अपनी सुस्ती में उसे पकड़ ना पाए। और यहीं पर वो कॉग्निटिव ईज या संज्ञानात्मक सहजता वाली बात भी आती है।
वो क्या है?
मतलब जो चीज जानी पहचानी लगे या समझने में आसान लगे, उस पर हम ज्यादा आसानी से यकीन कर लेते हैं, भले ही वो सच हो या ना हो।
अच्छा समझ गया, तो सिस्टम वन की इन गलतियों को ही वो ह्यूरिस्टिक्स और बायस कहते हैं।
हाँ बिल्कुल, ह्यूरिस्टिक्स यानी मेंटल शॉर्टकट, दिमाग मुश्किल सवालों के जवाब के लिए आसान रास्ते ढूंढता है।
शॉर्टकट लेना तो हमारी आदत है।
हाँ, और ये अक्सर काम भी आते हैं, पर कभी कभी यह हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। और जब ये गलतियां एक पैटर्न में होती हैं, तो उन्हें बायस या पूर्वाग्रह कहते हैं।
कोई उदाहरण, जैसे वो उपलब्धता वाला?
हाँ, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसमें हम किसी चीज के होने की संभावना का अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि उसका उदाहरण कितनी आसानी से दिमाग में आता है।
जैसे
जैसे प्लेन क्रैश की खबरें बहुत छपती हैं, डरावनी होती हैं, तो हमें लगता है हवाई जहाज में सफर करना कार चलाने से ज्यादा खतरनाक है।
जबकि आंकड़े तो उल्टा कहते हैं, रोड एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं।
सही, पर प्लेन क्रैश की इमेज दिमाग में ज्यादा आसानी से आती है तो वो ज्यादा संभावित लगता है।
और वो एंकरिंग वाला क्या था?
एंकरिंग बायस, इसमें कोई पहली जानकारी, चाहे वो बेकारी क्यों न हो, हमारे बाद के अंदाजों को पकड़ लेती है, एंकर कर देती है।
जैसे वो गांधी जी वाला उदाहरण,
हाँ
कि वो 40 साल से ज्यादा जिए या कम।
हाँ अगर मैंने 140 पूछा तो आपका अंदाजा शायद ज्यादा होगा, और अगर 35 पूछता तो शायद कम होता। वो पहली संख्या 140 या 35 एंकर बन गई।
अरे हाँ, दुकानों में मोल भाव में यही तो होता है, दुकानदार पहले बहुत ज्यादा दाम बताता है।
बिल्कुल, वही एंकरिंग है।
एक और था रिप्रेजेंटेटिवनेस, वो क्या है?
रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक, इसमें हम देखते हैं कि कोई चीज किसी स्टीरियोटाइप या खाके से कितनी मिलती जुलती है, और उसी आधार पर संभावना का अंदाजा लगा लेते हैं, बेस रेट यानी असल आंकड़े भूल जाते हैं।
जैसे वो लिंडा वाली प्रॉब्लम।
हाँ वही, लोगों को लगता है कि लिंडा का नारीवादी बैंक टेलर होना ज्यादा मुमकिन है बजाय सिर्फ बैंक टेलर होने के, क्योंकि उसका वर्णन नारीवादी स्टीरियोटाइप से मिलता है।
जबकि लॉजिकली हर नारीवादी बैंक टेलर तो है ही।
बिल्कुल, हम मुश्किल सवाल इसकी संभावना क्या है को आसान सवाल क्या ये स्टीरियोटाइप से मिलता है से बदल देते हैं।
बाप रे, दिमाग कितने शॉर्टकट लेता है। इनके अलावा एक और चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस। हमें लगता है हमें बहुत पता है।
हाँ ये भी बड़ी आम बात है। इसमें एक है हाइंडसाइट बायस,
हाइंडसाइट बायस
या पश्चदृष्टि पूर्वाग्रह।
मतलब
कोई घटना हो जाने के बाद हमें लगता है, अरे ये तो होना ही था, मुझे तो पता ही था।
हाँ यार, ये तो होता है, क्रिकेट मैच हारने के बाद सब एक्सपर्ट बन जाते हैं।
बिल्कुल, और इसकी वजह से हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं, क्योंकि हमें लगता है हमने तो पहले ही सही सोचा था।
और दूसरा था वो प्लानिंग वाला।
हाँ, प्लानिंग फैलेसी, हम कोई भी काम पूरा करने में लगने वाला टाइम, पैसे और रिस्क को हमेशा कम आंकते हैं और फायदों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं।
ओ, घर का रेनोवेशन हो या ऑफिस का प्रोजेक्ट, हमेशा देर और बजट ज्यादा।
अक्सर ऐसा ही होता है ना, सरकारी प्रोजेक्ट्स में तो ये बहुत दिखता है। कानेमन कहते हैं, इससे बचने के लिए आउटसाइड व्यू लो।
आउटसाइड व्यू मतलब
सिर्फ अपने प्रोजेक्ट इनसाइड व्यू पर मत देखो, देखो कि वैसे ही दूसरे प्रोजेक्ट्स का क्या हश्र हुआ, उनके आंकड़े देखो, इससे अंदाजा ज्यादा सही लगता है।
ये अच्छी टिप है। अच्छा, अब उस चीज पर आते हैं जिसके लिए नोबेल का मिला, प्रोस्पेक्ट थ्योरी। ये फैसलों के बारे में है।
हाँ, खासकर उन फैसलों के बारे में जिनमें रिस्क शामिल हो। पहले इकोनॉमिक्स मानती थी कि लोग अपनी कुल दौलत बढ़ाने के लिए फैसले लेते हैं।
हाँ, लॉजिकल तो यही लगता है।
पर प्रोस्पेक्ट थ्योरी कहती है, नहीं, हम फायदे नुकसान को किसी एब्सोल्यूट वैल्यू से नहीं, बल्कि एक रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं। यानी हम अभी कहाँ हैं, ये बहुत जरूरी है।
और यहीं पर वो लॉस अवर्शन या हानि से बचने वाला आइडिया आता है।
बिल्कुल, ये शायद इस थ्योरी का सबसे पावरफुल आइडिया है। कहानीमन कहते हैं, नुकसान लाभ से ज्यादा बड़े लगते हैं,
बल्कि हारने का डर जीतने की खुशी से ज्यादा होता है।
हाँ, मनोवैज्ञानिक तौर पर किसी चीज को खोने का दर्द उसी चीज को पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस होता है।
2 गुना? बाप रे।
इसीलिए हम नुकसान से बचने के लिए ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, पर फायदे के लिए रिस्क से बचते हैं। और इसी से वो एंडाउमेंट इफेक्ट भी जुड़ा है।
वो क्या है?
कि जो चीज हमारे पास है हमें वो ज्यादा कीमती लगने लगती है, क्योंकि उसे छोड़ना एक नुकसान जैसा लगता है।
अच्छा, आप समझा। किताब का एक और हिस्सा था जो बहुत दिलचस्प लग रहा था, दो स्व, खुशी और यादें।
हाँ, ये वाकई दिमाग घुमा देता है। कानमन कहते हैं हमारे अंदर दो स्व हैं, एक है अनुभव करने वाला स्व,
जो हर पल को जीता है, महसूस करता है।
बिल्कुल, जो पूछता है अभी कैसा लग रहा है, दर्द, खुशी, बोरियत सब। और दूसरा है याद रखने वाला स्व,
जो यादें बनाता है, कहानी लिखता है।
हाँ, जो अनुभवों का हिसाब रखता है, हमारी लाइफ की स्टोरी बनाता है और भविष्य के फैसले लेता है। वो पूछता है कुल मिलाकर कैसा रहा। और मजे की बात यह है कि ये दोनों हमेशा एक ही बात नहीं कहते।
हाँ? ऐसा क्यों?
यहीं पर आता है पीक एंड रूल और ड्यूरेशन निग्लेक्ट। हमारी यादें पूरे अनुभव को बराबर वजन नहीं देती।
तो फिर किस पर निर्भर करती हैं?
हमारी यादें मुख्य तौर पर दो चीजों पर टिकी होती हैं, अनुभव का सबसे इंटेंस पल, पीक, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, और अनुभव का आखिरी पल, एंड।
और अनुभव कितना लंबा था इससे फर्क नहीं पड़ता?
बहुत कम। इसी को ड्यूरेशन निग्लेक्ट कहते हैं।
ये तो अजीब है, वो कोलोनोस्कोपी वाला एक्सपेरिमेंट इसी पर था ना?
हाँ, वही, जिन मरीजों का प्रोसीजर थोड़ा लंबा चला पर आखिर में दर्द कम था, उन्होंने उसे कम बुरा बताया, उनसे भी जिनका प्रोसीजर छोटा था पर दर्दनाक अंत वाला था।
है ना अजीब, ज्यादा देर दर्द सहा पर याद बेहतर।
और सबसे बड़ी बात, हमारे भविष्य के सारे फैसले कौन लेता है?
कौन?
हमारा याद रखने वाला स्व। हम कहाँ छुट्टी पर जाएंगे, कौन सी फिल्म दोबारा देखेंगे, ये सब हमारी याद तय करती है, न कि हर पल का अनुभव। कानेमन तो कहते हैं मैं अपना याद रखने वाला स्व हूँ और अनुभव करने वाला स्व मेरे लिए अजनबी जैसा है।
बाप रे, ये तो बहुत गहरा है। तो इस सब बातचीत का निचोड़ क्या निकालें? मेरे लिए तो ये दो सिस्टम वाली बात बहुत बड़ी है। ये समझना कि कैसे वो तेज और धीमा सिस्टम काम करते हैं या नहीं करते हैं, कैसे हम एक ही साथ स्मार्ट भी हैं और बेवकूफ भी।
मेरे लिए इन बायस का पैटर्न में होना, कि हमारी गलतियां रैंडम नहीं है, ये जानना कि एंकरिंग कैसे काम करती है या अवेलेबिलिटी बायस हमें कैसे बहकाता है, ये हमें थोड़ा अलर्ट करता है।
और वो लॉस एवर्जन, हानि से बचना,
ये कितना पावरफुल है।
अपने यहाँ देखो, लोग लॉस वाले शेयर या प्रॉपर्टी बेचते ही नहीं है सालों तक।
हाँ, क्योंकि नुकसान पक्का करने का डर, या अच्छी नौकरी का ऑफर ठुकरा देते हैं क्योंकि मौजूदा आराम छोड़ने का नुकसान ज्यादा लगता है।
सही कहा।
और आखिर में वो याद रखने वाले स्व का कंट्रोल। हम जिंदगी को एक कहानी की तरह याद रखते हैं जिसमें हीरो मोमेंट्स और एंडिंग ज्यादा मायने रखती है। हम अक्सर वो काम करते हैं जिनसे अच्छी यादें बने, चाहे उस वक्त थोड़ा कष्ट हो।
तो इन्हें असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? जैसे पैसों के मामले में लॉस एवर्जन को ध्यान में रखकर पैनिक सेलिंग से बच सकते हैं।
बिल्कुल, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट करें तो प्लानिंग फैलेसी से बचने के लिए वो आउटसाइड व्यू लेना, दूसरों के अनुभव से सीखना।
रिश्तों में भी शायद ये समझना कि सामने वाला भी किसी बायस से सोच रहा हो सकता है, थोड़ी नरमी ला सकता है बातचीत में।
हाँ बिल्कुल, और बड़े लेवल पे देखें तो पॉलिसी बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, नजिंग जिसे कहते हैं, जैसे ऑर्गन डोनेशन के लिए ऑप्ट आउट सिस्टम। डिफॉल्ट को बदलना मुश्किल होता है ना।
हाँ सही है। तो आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा है इस किताब से?
मेरे लिए शायद एक तरह की बौद्धिक विनम्रता, ये मानना कि हम उतने लॉजिकल नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। अपनी गट फीलिंग पर भी सवाल उठाना जरूरी है, खासकर बड़े फैसलों में। और हाँ, वो दो स्वो वाली बात, अनुभव और याद का फर्क, ये बहुत सोचने पर मजबूर करता है।
और मेरे लिए ये जानना कि सिस्टम एक असल में कितना कुछ चला रहा है पर्दे के पीछे से, और ये कि इन कमियों को जानकर हम शायद थोड़े बेहतर फैसले ले पाएं, या कम से कम अपनी गलतियों को समझ पाएं। ये जानना कि हम क्यों सोचते हैं जिस तरह सोचते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है।
तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर हमारे यादें ही हमारे फैसलों को चलाती हैं, तो क्या हम असल में अनुभवों को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं या सिर्फ अच्छी कहानियां बनाने पर?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।